नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं। कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं। कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, नहीं एक भी नहीं। रब को जो चाहता हो, नहीं एक भी नहीं। करता हो जो भलाई, करता हो जो भलाई, नहीं एक भी नहीं। कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं। सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है। अच्छाई क्या करोगे, ईमान से बचोगे, सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है। कोई उसके जैसा, नहीं एक भी नहीं। चाहे हो कोई कैसा, चाहे हो कोई कैसा, नहीं एक भी नहीं। जो अपनी जान दे दे, नहीं एक भी नहीं। सबके गुनाह ले ले, सबके गुनाह ले ले, नहीं एक भी नहीं। कोई नहीं अच्छा, नहीं एक भी नहीं।
तो कौन सा ऐसा नाम है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कि जिस नाम के वसीले से हमें नजात मिलती हो।
हर पाप से छुड़ाता, अपना लहू बहाता, दुनिया को माफ करता। यसू ही है बचाता, हर पाप से छुड़ाता, अपना लहू बहाता, दुनिया को माफ करता।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की प्रेम में रह करके कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन में प्रवेश करें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हम इसे प्रत्येक जन जब आपके वचन को सुनते हैं तो निश्चित रूप से समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सकें। हर एक प्रकार की बुराई से, व्यर्थ की बातों से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप हम सबकी रक्षा करें। अपनी शांति, अपनी आनंद हम में से प्रत्येक के जीवन में दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि हम पिछले अध्ययन में देख रहे थे भजन संहिता 44 से, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और 44 के 5 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। हम कोरह वंशियों द्वारा रचा गया भजन देख रहे थे जो निश्चय ही भविष्यवाणी का भजन है और इसराइल से संबंधित है। महाक्लेश में यह भजन परमेश्वर की मुक्ति की पुकार है। आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 44 उसके 5 और 6 पद को निकालें। लिखा हुआ है, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। मेरे प्रियो, महाक्लेश के समय शेष रहे भक्त इसराइली बदले के लिए परमेश्वर को पुकारेंगे। वे व्यवस्था के अधीन हैं, इसलिए वे ऐसी प्रार्थना करने का अधिकार रखते हैं। आज हमें छल करने वालों के लिए प्रार्थना करना है। हमें तो अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। हमें उनसे प्रेम करना है। यह एक कठिन कार्य है, परंतु हम अपने वैरियों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ सकते हैं। हमें बदला नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है रोमियों की पत्री 12 अध्याय उसके 19 पद में, हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। जी हाँ, हमें अनेकों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है, उद्धार ही के लिए नहीं परंतु बदला लेने के लिए। मैं उनके विषय नहीं कहता जिनसे हमें व्यक्तिगत शिकायत है, परंतु उनके लिए कहता हूँ जो परमेश्वर के वचन के प्रचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर के लिए खड़े होने वाले स्त्री और पुरुष का नाम बदनाम करना एक भयानक बात है। अपने कलीसिया के पासवान की आलोचना करने से पूर्व आपको अति सावधान रहना है। निश्चय कर लें कि आपके हाथ में तथ्य है। कुछ लोग पुरोहित को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। वे उनके वचनों पर ही परमेश्वर को आंकते हैं। उनकी समझ में पुरोहित को बुरा कहना परमेश्वर की निंदा करना है। मेरे विचार में यही कारण है कि अनेक युवक आज बाइबल और कलीसिया का त्याग कर चुके हैं। उनमें से अधिकांश मसीही परिवारों में बढ़े हुए हैं और उनके माता पिता ने प्रत्येक रविवार पास्टर की सेवा की है। परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले की आलोचना करना उचित नहीं है। यदि कहीं कुछ गलत है तो हमें हस्तक्षेप करने की अपेक्षा परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। इसराइल गहन संकट में है, बैरी उन पर गरज रहा है। दानियल द्वारा व्यक्त छोटा सिंह सर्वोच्च परमेश्वर के भक्तों को कष्ट देगा। दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय के उसके 25 पद में लिखा है, जी हाँ, ये यहूदी भक्त जन है जिनके विरोध ख्रिस्त विरोधी युद्ध करेगा। उन्हें चिताया गया है कि वे विरोध न करें, वे पशु का चिन्ह स्वीकार नहीं करेंगे, वे बड़ी संख्या में घात किए जाएंगे, अपने कष्टों में वे परमेश्वर को पुकारेंगे। मेरे विचार में यह विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा अंधकारपूर्ण समय होगा। हम भजन संहिता 44 उसके 22 पद में पढ़ते हैं, परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर हैं। क्या आप कहेंगे कि यह आज की कलीसिया का चित्रण नहीं है? आज भी तो अनेक विश्वासी मसीह के लिए कष्ट उठा रहे हैं, परंतु अंततः कलीसिया सताव के अधीन नहीं है। तथापि इसराइल के शेष रहे भक्त सताए जाएंगे, यहाँ उन्हीं के विषय में चर्चा की जा रही है। मैं इसे स्पष्ट रखना चाहता हूँ। भजन संहिता 44 उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। यह परमेश्वर को सचेत करने की पुकार है। परमेश्वर तो सोता ही नहीं है। इसराइल भक्त अपनी हताशा में परमेश्वर को पुकार रहे हैं। मक्काबी युग पुराने और नए नियम के मध्य इसराइल के वैरी उठ खड़े हुए थे। जहां तक अतीत का प्रश्न है, इतिहास में इसराइल ने सर्वाधिक कष्ट उठाया था, परंतु महाक्लेश के समय उनके कष्ट के सामने उनका यह कष्ट कुछ भी नहीं होगा। मक्काबी युग में याचकों का एक समूह परमेश्वर से सदा यही प्रार्थना करता था, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है? उस समय उन्हें ऐसा लगता था कि परमेश्वर सो रहा है। जॉन हरकिनश मक्काबी एक महायाजक ने इस अभ्यास का अंत किया था। उसने उनसे पूछा, क्या परमेश्वर सोता है? क्या धर्मशास्त्र नहीं कहता, देख इसराइल का रक्षक न ऊँगता है न सोता है? आपको चाहे ऐसी अनुमति हो तो भी आपको परमेश्वर से जागने की याचना नहीं करना है। भविष्य में शेष रहे इसराइली भक्तों को ऐसी अनुभूति होगी कि परमेश्वर सो रहा है, और वे कहेंगे, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है? उस दिन परमेश्वर सोता न रहेगा, उसमें सोता न होगा, वह तैयार रहेगा, वह अपनी प्रजा को त्यागेगा नहीं। भजन संहिता 44 उसके 24 से 26 पद में हम पढ़ते हैं, तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। इस संसार के इतिहास के अंधकार से एक पुकार उठेगी कि परमेश्वर अपनी दया के कारण उन्हें मुक्ति दिलाए। यह शेष अर्थात बचे रहे इसराइलियों की पुकार होगी। यह सहायता और न्याय की याचना है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 44 समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 45 में देखते हैं, जिसका विषय है पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने हेतु मसीह का आगमन। जी हाँ, यह मसीह संबंधित भजन है और इब्रानियों की पत्री में इसका संदर्भ दिया गया है। यह भी एक मश्किल है अर्थात निर्देशन भजन है और कोरह वंशियों द्वारा रचा गया है। इसके शीर्षक में लिखा है प्रधान बजाने वाले के लिए शोषनीम राग में। शोषनीम का अर्थ है शोषण। यह प्रभु यीशु का अर्थात मसीह रूप में चित्रण है। वह तराई की शोषण और शारोन का गुलाब है। इसका अनुवाद तारगुमिम में इस प्रकार है, हे मसीह राजा, तेरा सौंदर्य मनुष्य की संतान से अधिक है। जी हाँ, यह अद्भुत भजन मसीह के दूसरे आगमन की चर्चा करता है। यह भजन महाक्लेश में भक्तों की दुखद पुकार को उनके आने वाले राजा की विजय की ओर ले जाता है, जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय में व्यक्त किया गया है। हमारे प्रभु यीशु ने भी मत्ती रचित समाचार 24 अध्याय उसके 29 और 30 पद में यही कहा है, और यह संसार की आशा है। भजन संहिता 45 के 1 पद में लिखा है, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूँ, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है अर्थात उद्गार निकालने वाला है। वह कुछ कहने के लिए अधीर है और चाहता है कि कह दे, क्योंकि उसकी जीभ कलम से भी तेज चलती है। यह हम में से अधिकांश के साथ सच है। क्या आपने कभी बहुत बड़ी खुशखबरी अपने मित्र को लिखने का प्रयास किया है? आप लिखने के बाद सोचेंगे कि लिखने की अपेक्षा यदि आप वह कह पाते और भी अच्छा होता। मुझे भी कभी ऐसा ही लगा है। एक अनुभव मैंने भी प्राप्त किया है। मैंने अपने एक मित्र को लिखकर कुछ बताना चाहा, परंतु मुझे संतोष नहीं हुआ, अतः मैंने उसे फोन किया, परंतु भजनकार तो हमें फोन नहीं कर पाएगा। इस कारण उसने भजन 45 को लिखकर हमें दिया है। मसीह उसका व्यक्तित्व और उसका सामर्थ्य है। मेरे मित्रों, यह एक अनुपम भजन है जो मसीह के मनुष्यत्व से पूर्ण है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है, परंतु जब हम उसके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे मित्रों, हमें उसके चेहरे को अधिकाधिक निहारना है। इस भजन में प्रभु को उद्धारक नहीं राजा देखते हैं। भजन संहिता 45 के 3 पद में लिखा है, हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। ध्यान दीजिए, यह प्रभु यीशु के आगमन का चित्रण है जो उद्धारकर्ता के रूप में नहीं एक राजा के रूप में है। इसराइल तलवारधारी मसीहा की प्रतीक्षा में है। पहली बार तो वह बिना तलवार के आया था। आपको स्मरण होगा कि जब यीशु को पकड़वाने वाले आए थे तब एक शिष्य ने तलवार चला दी थी और महायाजक के कर्मचारी का कान कट गया था। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 52 पद में हम देखते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, अपने तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। आज हमारे लिए समय है कि शांति लेने वाले मसीहा की प्रतीक्षा की जाए। उसके हाथ में तलवार नहीं होगी, परंतु भजन संहिता 2 उसके 9 पद में प्रभु के बारे में कहा गया है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। भजन संहिता 2 मसीह यीशु के दूसरे आगमन की चर्चा करता है। और सच तो यह है कि यह भजन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अनेक बार मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में संदर्भित किया गया है। जब वह फिर आएगा तब संसार विद्रोह की दशा में होगा। ख्रिस्त विरोधी अर्थात मसीही विरोधी के हाथ में सत्ता होगी और वह परमेश्वर की प्रजा को सता रहा होगा। इसराइल के शेष रहे अर्थात बचे हुए भक्त और अन्य जाति जो उसको अपनाएंगे, जी हाँ, लिखा है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। इस पर बल अवश्य दिया गया है, परंतु दंड और न्याय तो होगा ही। मेरे विचार में हमें सिद्धांतवादी होने की अपेक्षा यथार्थवादी होना है। वह विद्रोही संसार के विरुद्ध सामर्थ्य और क्रोध के साथ आएगा। भजन संहिता 45 के 4 पद में लिखा है, सत्यता नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो, तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। भयानक काम अर्थात श्रद्धापूर्ण भय की बातें। यहाँ ध्यान दे, प्रभु यीशु विजय की ओर अग्रसर है और यहाँ उसके तख्त के 3 पक्ष हैं, सत्य, दीनता और धार्मिकता। क्या आप आज किसी भी ऐसे नेता को जानते हैं जो इन 3 पक्षों में आचरण करता हो? ये तो हमारे प्रभु के राज्य के 3 सिद्धांत हैं। इस संसार में कभी भी कोई ऐसा शासक नहीं हुआ है जिसके ये 3 लक्षण हो, परंतु यह राजा भिन्न है। मसीह यीशु का चरित्र सत्य है, उसके वचन सत्य हैं, परंतु मनुष्य उसे झूठा कहते हैं। सब मनुष्य झूठे हैं परंतु यीशु नहीं है, क्योंकि उसका वचन हमें बताता है कि जो कुछ भी उसने कहा है उसने किया है। कथनी और करनी दोनों उसके सच हैं। आज आप न तो बाजार में, न दलाल की स्ट्रीट में, और न ही किसी औद्योगिक क्षेत्र में, न कॉलेज में, न समाचार पत्रों में, और न टीवी में, न रेडियो पर सत्य को सुनेंगे। सब कुछ विकृत किया जाता है। दुर्भाग्य से कलीसियाओं में भी सत्य सुनाया नहीं जाता, परंतु प्रभु यीशु सत्य और दीनता के मंच पर खड़ा होगा। किसी ने कहा है, यदि आप संसार को चकित कर देना चाहते हैं तो सत्य बोलें। हमारा प्रभु इसी प्रकार उठेगा, यह एक आश्चर्य की बात होगी। भजन संहिता 45 के 5 पद में लिखा है, तेरे तीर तो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। यह पृथ्वी पर आने वाला राजा का चित्रण है। मसीह उसका राज्य और महिमा, यह राज्याभिषेक दिवस है। यह इस भजन का मुख्य भाग है। भजन संहिता 45 के 6 पद में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है, वह धार्मिकता में शासन करेगा। संसार को एक धर्म शासक की कैसी आवश्यकता है। अपने पुनः आगमन के विषय यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 31 पद में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तक पृथ्वी पर शांति नहीं होगी। शांति संसार की आवश्यकता है। सब राज्य धीरे धीरे पुराने होते जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर का राज्य का अंत ना होगा, उसका राज्य अनंत काल तक का होगा। भजन संहिता 45 के 7 पद में लिखा है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। अभिषिक्त जन मसीहा है, जिसे यूनानी भाषा में ख्रिस्त या मसीह कहा गया है। यह नाम नहीं है, यह उसका अधिकृत पद है। पहली बार तो वह भविष्यद्वक्ता स्वरूप आया था, अर्थात परमेश्वर का संदेश वाहक था या स्वयं परमेश्वर का संदेश था, यह तो था अतीत की बात। परंतु आज वह हमारा महायाजक है जो परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है या विराजमान है, यह उसकी वर्तमान सेवा है। उसका दूसरा आगमन राजा के रूप में होगा जो मसीहा होगा, यह भविष्य की बात है। लिखा है हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। यह दुर्भाग्य है कि हम उसे दुखी मनुष्य समझते हैं। मैं तो यह मानता हूं कि जब वह इस पृथ्वी पर था तब सबसे अधिक आनंदित मनुष्य था। इस भजन का मसीह संबंधित भजन होने की पुष्टि इस बात से होती है कि ये दो पद इब्रानियों की पत्री में संदर्भित किए गए हैं। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। आलोचक जो इस भजन को सुलेमान या अन्य किसी राजा से संबंधित बताते हैं वे भूल जाते हैं कि उसे परमेश्वर कहा गया है। यह तो संभव नहीं कि सुलेमान हो या अन्य कोई राजा भजनकार उसे परमेश्वर कहे। इब्रानियों का यह संपूर्ण अध्याय हमारे प्रभु यीशु को महिमामय प्रस्तुत करता है जो परमेश्वर का स्वरूप है और स्वर्गदूत से ऊपर है तथा परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। मित्रों हम भजन संहिता 45 के 8 पद में पढ़ते हैं, तेरे सारे वस्त्र गंधरस अगर और तेज से सुगंधित हैं, तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। वह इस पृथ्वी पर आया कि हमारा आनंद पूर्ण हो और यह उसके सामने रखे आनंद के निमित्त था कि उसने क्रूस की मृत्यु स्वीकार की। ओह हम विश्वासियों के लिए कैसा आनंद मनाना चाहिए। यहूदा का गोत्र जिसका अर्थ है स्तुति, उसने इसराइल की जंगल में अगुवाई की थी, परंतु उन्होंने कुकू की कुड़कुड़ाहट दुखद गीत गाए जबकि उन्हें स्तुति के गीत गाना चाहिए थे। आज कलीसिया यही कर रही है। मेरे प्रियो विश्वासियों को परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, शिकायत नहीं। बड़े दिन के समय हम गाते हैं, खुश हो खुदावंद आया है उसको कबूल कर ले। यह तो मसीही गीत है ही नहीं, यह तो मसीह के दूसरे आगमन का गीत है और इसे पर्व संबंधित नहीं बनाना चाहिए। अब इस भजन में न्यायालय का दृश्य भी है। भजन संहिता 45 के 9 पद में लिखा हुआ है, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं, तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। मेरे प्रियो पुराने नियम में कलीसिया शब्द नहीं आया है, परंतु मैं तो यह मानता हूं कि प्रतीकों में या रूपकों में आप कलीसिया को वहां देख सकते हैं। मेरे विचार में दुल्हनों का उल्लेख पुराने नियम में मसीह और उसकी दुल्हन कलीसिया का प्रतीक है। इसके उदाहरण है हव्वा, रिबका, रूथ आदि। इस पद में व्यक्त पटरानी कौन है? मेरा मानना है कि यह कलीसिया का प्रतीक है, यद्यपि उसकी विशेष पहचान नहीं है। मसीह उसे सिंहासन पर बैठाएगा। भजन संहिता 45 उसके 10 पद में लिखा हुआ है, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। ध्यान दीजिए, हमें इस संसार से जाना होगा, हमें संसार से प्रेम नहीं रखना है, हम तो इससे मुक्त कराए जाएंगे, अर्थात हम कराए जा चुके हैं, हमें प्रभु को थामे रहना है। भजन संहिता 45 उसकी 11 पद में लिखा है, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। कलीसिया के पाप धोकर उसे सुंदर बनाया जाएगा, और यह कैसा अद्भुत भविष्य है। भजन संहिता 45 के 17 पद में लिखा है, मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी, इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। मेरे प्रियो, यह सहस्त्र वर्षीय मसीही राज की चर्चा है, परंतु प्रभु कुछ सुधार करके अनंत राज्य करेगा, जिसमें कुछ समय के लिए शैतान की मुक्ति है। इसके पश्चात अनंत समय के लिए अग्निकुंड और गंधक की आग में डाल दिया जाएगा। यह एक महान भजन है और उचित परिप्रेक्ष्य में है। यह हमारे लिए आज महान महत्व रखता है। मेरे प्रिय मित्रों, यह क्या ही सौभाग्य की बात है कि इस भजन के द्वारा हम ऐसे भली बातों को सीखते हैं जो भविष्य की है। क्या आज हम उस भविष्य काल के महाक्लेश के लिए तैयार हैं? आइए हम अपने जीवन को जांचें और सुधारें कि परमेश्वर हमारा मेरा राजा बन जाए, मेरे जीवन में राज्य करे, ताकि शांति और आनंद मैं देखने पाऊं। प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक बातों को सीखा है। प्रभु आप सबकी सहायता करे, ताकि आप भले मनुष्य के रूप में जीवन जी सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
अच्छाई क्या करोगे, ईमान से बचोगे, सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है। अच्छाई क्या करोगे, ईमान से बचोगे, सबने गुनाह किया है, सब उससे दूर है। कोई उसके जैसा नहीं, एक भी नहीं, चाहे हो कोई कैसा, चाहे हो कोई कैसा, नहीं एक भी नहीं।